24 से 2000 की प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है, दुखियों पर कुछ रहम करो। रहम दिल तो परमात्मा को ही कहेंगे और दुखी ही उनसे रहम मांगते हैं। परमात्मा के अलावा और कोई रहम दिल नहीं है। जो सदा सुखी है वो तो नहीं मांगेंगे, रहम का मतलब है उनसे सुख की मांग करते हैं। ये मांग परमात्मा से ही करते हैं क्योंकि सबका पिता हुआ है, सबको सुखी करने वाला भी हुआ है। उसके अलावा और कोई में इतनी ताकत नहीं है जो दुनिया की सब मनुष्य आत्माओं को सुखी कर सके। इसलिए हरेक की नजर उनकी तरफ जाएगी। जाएगी किनकी तरफ? उनकी तरफ। ब्रह्मा की तरफ इशारा नहीं किया, इसकी तरफ जाएगी। या बोलने वाली आत्मा ने अपने लिए भी नहीं बोला, मुझे ज्योति बिंदु की तरफ जाएगी। क्या बोला? क्योंकि सिर्फ ज्योति बिंदु तो काम नहीं पूरा कर सकता। वो ज्योति बिंदु शिव निराकार जब साकार में प्रवेश करके फुल एक्ट बजाए, परमात्मा पार्ट बजाए, तभी सुखी की दुनिया बन सकती है। सुख की दुनिया भी साकार, बनाने वाला भी साकार। इसलिए बोला कि सबको सुखी करने वाला भी हुआ है, इसलिए हरेक की नजर उनकी तरफ जाएगी। उनको ही कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। बल बच्चे तो सब उनके हैं, लेकिन एक हैं सगे और दूसरे हैं लगे। सगे जो मातेले होते हैं, सगे बच्चे हुए हैं जो डायरेक्ट मुखवंशावली रचते हैं। डायरेक्ट मुखवंशावली जो डायरेक्ट ब्रह्मा मुख की बात को माने वो डायरेक्ट मुखवंशावली। जिनों का अविनाशी ज्ञान से उनके साथ ही प्योर संबंध जुटता है उनके साथ। संबंध तो सभी साकार में होते हैं, निराकार आत्मा आत्मा का तो कोई संबंध नहीं होता है। तो ये सब है मुखवंशावली। डायरेक्ट ब्रह्मा की औलाद, क्योंकि बोला है जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, बाकी तो सारी दुनिया है लगे बच्चे। सगे और लगे के अर्थ को भी समझना है तो मुक्ति और जीवन मुक्ति को भी समझना है। सगे का कनेक्शन कैसे है, कौन सी प्राप्ति से है, और लगे का कनेक्शन कौन सी प्राप्ति से है? सगे और लगे के साथ मुक्ति और जीवन मुक्ति को समझने के लिए क्यों बताया? क्या कनेक्शन? सगे का कनेक्शन है जीवन में रहते हुए मुक्ति प्राप्त करना, और लगे का कनेक्शन है जीवन में रहते बाप से डायरेक्ट जीवन की मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। पहले मुक्ति प्राप्त करेंगे, फिर बाद में एक जन्म की जीवन मुक्ति मिलेगी। तो जो डायरेक्ट उनकी मुखवंशावली बनते हैं उन्हों को जीवन मुक्त बनाते हैं। मुखवंशावली क्यों कहा? मुखवंशावली अर्थात मुख से निकली हुई बात को माने तो मुखवंशावली, उनको जीवन मुक्त बनाते हैं, बाकी सब बच्चों को मुक्ति में भेज देते हैं। ऐसे तो जो भी आत्माएं नीचे उतरती हैं तो पहले सब जीवन मुक्त हैं, पहले जन्म में सबको जीवन मुक्ति मिलती है। क्योंकि कोई भी कर्मों का हिसाब किताब नहीं है, बाप के घर से डायरेक्ट आत्मा आती है, गर्भ से जन्म नहीं ले सकती, प्रवेश करती है, इसलिए सजा नहीं भोगती। लेकिन जीवन मुक्ति की भी स्टेजेस हैं। परमात्मा ने जो अपने मुखवंशावली ब्राह्मणों को जीवन मुक्ति दी है, सर्वोत्तम जीवन मुक्ति सतो प्रधान, जिसमें संपूर्ण सुख शांति पवित्रता कायम है, वो कौन से जन्म की है? चौरासी जन्मों में से कौन से जन्म की है? वह जीवन मुक्ति जिसमें संपूर्ण सुख शांति पवित्रता कायम है, सोलह कला संपूर्ण, फर्स्ट संगम युगी जन्म की, जिसे संगम युगी स्वर्णिम काल कहे, जब राधा कृष्ण का जन्म होता है। पीछे वाले जो सतयुग के पहले जन्म के बाद उत्तरोत्तर जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, उनकी बाद वाली स्टेज कहें। जीवन तो रहता है लेकिन बाप से डायरेक्ट इसी जीवन में प्राप्ति नहीं कर पाती, और थर्ड क्लास जीवन मुक्ति उनकी है जो द्वापर और कलयुग में एक जन्म के लिए आकर के जीवन मुक्ति प्राप्ति करती है। तो जीवन मुक्ति की भी स्टेजेस हैं। द्वापर से पवित्रता की बात तो नहीं रहती है, लेकिन आत्माएं जो आती हैं उनों का कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं है। क्योंकि सृष्टि के अंतकाल में जो भी आत्माएं वापस घर जाती हैं, कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होकर के जाता है, इसलिए आधा समय सुख शांति में रहती है, उसको कहेंगे रजोगुणी जीवन मुक्ति। क्या रजोगुणी जीवन मुक्ति में भी आधा समय सुख शांति रहती है, जो एकदम कलयुग में उतरती हैं उनों की सुख शांति भी उतनी ही कम हो जाती है, इसलिए वो है तमोगुणी जीवन मुक्ति, फोर्थ क्लास जीवन मुक्ति, क्योंकि आत्माएं आती भी है नंबर वार, तो जितना देरी से आती हैं उतना कम स्टेज वाली आती है। ये सत्य रूपी रंगमंच पर जैसे सोने चांदी कापर और लोहे का खाद पड़ता रहता है, क्योंकि कम स्टेज वाली उत्तरोत्तर आत्माएं आती रहती हैं, ढेर की ढेर आती हैं, उनके संग का रंग जो सत्य पर पहले से जीवन बिताए रहे हैं उन आत्माओं को लगता है, यह राज बाप बैठ समझाते हैं। कि सृष्टि क्यों नीचे उतरती है, आत्माएं क्यों सतो प्रधान से तामसी बनती जाती है, तो पहले सर्वोत्तम जीवन मुक्ति है जो पहले आदि सनातन धर्म की होती है, आदि शब्द क्यों लगाया, क्योंकि 84 जन्मों में से जो आदि का जन्म है वो सर्वोत्तम जीवन मुक्ति वालों को ही प्राप्त होता है। फिर नंबर वार स्टेज के अनुसार आत्माएं आती जाती हैं, तो हर चीज की स्टेज तो जरूर होती है। बाप बैठ समझाते हैं मुक्त तो सबको करना है, सबको मुक्ति देता हूँ, लेकिन मुक्ति में भी वहाँ नंबरवार सेक्शन है, ऐसे नहीं कि सिर्फ जीवन मुक्ति में ही सेक्शन है, जितने जितने पवित्र उतना उतना मेरे समीप निवास करते हैं। मैं तो सबसे ऊंची, ऊंच और नीच की बात कहाँ होती है, साकार दुनिया में या निराकार दुनिया में, साकार दुनिया में नीच और ऊंच होता है, निराकारी धाम की तो बात ही नहीं, तो ये जो बोला कि जितना जितना पवित्र उतना मेरे समीप निवास करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, कि संगम युग में भी जो नंबर वार ऊंची स्टेज बनेगी जिसके लिए बोला है तुम बच्चे परम धाम को भी सृष्टि पर उतार लेंगे, उस परम धामी ऊंचते ऊंच और नीचते नीचे स्टेजेस भी बनेगी, मैं तो सबसे ऊंचू, बाकी सब सोल्स नंबर वार। तो पवित्रता के आधार पर आत्माएं मेरे समीप रहेंगी, कौन सी सृष्टि की बात है, निराकारी सृष्टि की बात है या साकारी सृष्टि की बात है, जरूर जो हीरो पार्टधारी है उसकी तरफ इशारा किया कि जो ऊंचते ऊंच पार्टधारी है उसके समीप आत्माएं वही निवास कर सकेंगी जो जितनी ज्यादा पवित्र होंगी, बाकी सब सोल्स नंबर वार है, उन्होंने भी पहले हैं अव्यक्त देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर साकार लक्ष्मी नारायण इत्यादि, मुखवंशावली ब्राह्मण देवता धर्म, फिर नंबर वार और धर्म आते हैं, जैसे नंबर वार ताकत अनुसार यहाँ पाठ बजाने उतरते हैं, वैसे वहां भी नंबरवार निवास करते हैं। ये भी बना बनाया ड्रामा है, इसमें कुछ अदल बदल है नहीं हो सकती है। कोई कहे कि ये संपूर्ण सुख का पाठ दूसरे धर्म को क्यों नहीं देते हैं, लेकिन नहीं, सबको अपना पाठ अनाज मिला हुआ है। ऐसे भी नहीं हो सकता जो क्राइस्ट का पाठ बुद्ध को मिल जाए। भक्ति मार्ग में भी यही कहते हैं, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। जब जब त्रेता होगा राम की सोला करके अपना पाठ बजाती है। हर सतयुग के आदि में नारायण को अपना पाठ बजाना है, तो क्राइस्ट का पाठ बुद्ध को नहीं मिल सकता। अपने अपने धर्म की स्थापना कर फिर उनकी पालना भी उनको ही करनी है। इनको जिन्होंने स्थापना की है उनको ही अगले जन्म में फिर पालना करनी है। जब धर्म की वृद्धि हो जाए, क्योंकि जो धर्म स्थापन करते हैं वो जैसे अपने धर्म का पिता हो गया, तो उनको अपने बच्चों की पालना भी करनी है। दूसरा भी, इसलिए अपने अपने धर्म के गुरु बनते आते हैं, पालना भी तो यहाँ ही करेंगे, इसलिए कोई वापस नहीं जा सकते। सब यहाँ ही आते रहते हैं, फिर अंत में सब आकर के इकट्ठे होते हैं। जब सारा वृक्ष निकल अंत में आते हैं, तब बीज आकर के सबको वापस ले जाते हैं। कौन सा बीज आता है? निराकार बीज ही की बात है, जो सब आत्माओं का बाप है। आत्माएं सब बिंदु बिंदु बीज है, लेकिन वो निराकार बीज जब साकार जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उसमें आकर के निराकारी स्टेज को प्राप्त कराता है, तब दूसरी आत्माएं भी निराकारी स्टेज में जाती है वापस। ऐसे नहीं हर एक डाल जैसे अलग अलग आती है ऐसे अलग अलग टाइम पर जाएंगे, नहीं, सबको एक ही टाइम पर निराकारी स्टेज में वापस जाना है। जाने का टाइम सबका एक है, एक ही बार परमात्मा आकर सबको वापस ले जाते हैं, और भेजते भी वही हैं। इसलिए इब्राहिम बुद्ध को मैसेंजर कहते हैं, लेकिन वह बाप अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं, वो कोई मैसेंजर नहीं भेजते। और यह टाइम तो उनके आने का है, तो वो ही आकर के यह दैवी धर्म स्थापन करते हैं। इसको आर्य धर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि आर्य माना ही श्रेष्ठ है, सबसे सुधरे हुए देवताएं हैं। अथवा राधा स्वामी भी कह सकते हैं, राधा अथवा लक्ष्मी और नारायण भी हम बनते हैं, तो उन्होंने हमारा ही नाम लेकर ये अनेक मठ पंथ बनाए दिए। अभी तो अनेक अनेक धर्म है, उन्हों की भी सबकी अंतिम स्टेज आ गई है, सब तामसी स्टेज में है, इसलिए कोई में भी ताकत नहीं रहती है। धर्म की ताकत जैसे ना के बराबर हो जाती है। रिलीजन इज माइट नाम की चीज नहीं रहती। अभी तो सब इतने दुखी हुए हैं जो समझते हैं इस पाठ में आवे ही नहीं, तो उन्हों की भी आस पूर्ण करते हैं। किनों की आस पूरी करते हैं?
जिन्हों को अंदर से ये संकल्प आता है कि हम इस पार्ट में नहीं आवे, ये दुनिया बनी ही क्यों? भगवान के लिए बल मानते हैं, हर कल्प में आता है, लेकिन अपने लिए सोचते हैं कि हम आवे ही क्यों? ये नहीं सोचते कि हमारे ही कर्मों का फल है जो हम दुख भोगते हैं, तो समझते हैं इस पार्ट में आवे ही नहीं तो उनकी हम आंख पूर कर देता हूं। लंबे समय तक निराकारी स्टेज में, निसंकल्प स्टेज में आत्मा पड़ी रहती है परमधाम में, और भारतवासी जीवन मुक्ति मांगते हैं, कहते हमको वैकुंठवासी बनाओ। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो उन्हों के लिए स्वर्ग स्थापन करता हूं। अब ही सचमुच स्वर्गवासी हो सकते हैं, अब माना कब? माना सतयुग में नहीं, कब हो सकते हैं? अब ही संगम युग में ही सचमुच स्वर्गवासी हो सकते हैं। संगम का मतलब ये है जहां चार युगों की शूटिंग होती है, अति दुख की भी तो अति सुख की भी, बाकी तो जन्म जन्मांतर नर्कवासी होते आए हैं, नीचे ही गिरते आए हैं। हेल हेवन है तो यहां इस स्टेज पर है। अब अंतिम समय है, बहुत दुख का टाइम है, तो बहुत समय तो नहीं चलेगा, इसका भी विनाश होगा। किसका? जो अति रौ रव नरक अति दुख का समय है, जो अभी आया नहीं अभी आने वाला है, वो बहुत समय नहीं चलेगा, इसका भी विनाश हो जाएगा। तो कहते हैं विनाश से थोड़ा समय पहले आते, तो विनाश तो होना ही है। ये जो बांस बने हैं वो ऐसे ही थोड़े ही रखे रहेंगे, वो जब काम में आएंगे या भारत में जब आपस में लड़ेंगे तब सोचो जरा क्या हालत होगी। जब पाकिस्तान हुआ तब भी कितने मनुष्य दुखी हुए, उसकी भेंट में। अब जब इतनी विनाश की आग भड़केगी तो मनुष्य कितने दुखी होंगे। इसलिए उस दुख से बचाने के लिए थोड़ा समय पहले आते, इसलिए आते हैं कि ऐसा तरीका बता दें कि जो आत्मा है उस दुख में अपने को दुखी महसूस न कर सके। जब परमात्मा द्वारा पवित्र बने तब सुख शांति में राजी भोगने की पावर मिले। सुख शांति भोगना भले आत्माओं का काम है, लेकिन देना तो उनका काम है ना। आत्माएं तो सब पांच विकारों के वशीभूत होकर दुखी होकर के आपस में लड़ती झगड़ती रहती है। अब तो कैसे एक दो का विनाश करने को तैयार हो गए? तो बच्चों को शांत कराना बाप का काम है। उनकी युक्ति यही है जो सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। अच्छा, अभी हम पुराने से नए बन रहे हैं, ये तो समझते हैं कि नई चीज सुख देने वाली होती है और पुरानी चीज दुख देने वाली होती है। हम भी जब नए थे तो बहुत सुखी थे, अब फिर हम सुख की तरफ जा रहे हैं, इसके लिए हमको परमपिता परमात्मा ज्ञान और योग बल के साहचे में ढाल रहे हैं। संस्कारों को पलटाना यह कार्य परमात्मा का है। संस्कारों का परिवर्तन और कोई नहीं करा सकता, वही परमात्मा बाप बच्चों को काले से गोरा बनाए रहे, तो शरीर भी ऐसे बनेंगे कैसे? आत्मा गोरी बनेगी तो शरीर भी गोरे सत्व प्रधान बनेंगे, आत्मा है तो अनादि, शरीर तो अनादि नहीं है, लेकिन बाप आकर दोनों को प्योर बनाए रहे, अनादि आत्मा को भी प्योर बनाते हैं और शरीर को भी प्योर बनाते, इसलिए उनको रचयिता भी कह सकते हैं। आत्मा नहीं रची जाती है, आत्मा तो अनादि है, लेकिन आत्मा जिस शरीर में प्रवेश है, जिस शरीर के द्वारा कार्य कर रही है, वह शरीर भी जब सत्व प्रधान बन जाए तो उनको रचयिता कहा जा सकता है। हम आत्माओं को जैसे नया जन्म देते, शरीर को ही रिजुविनेट कर देते, जैसे पुराने जेवर से नया बनाते हैं, पुराने जेवर को नया बनाया जाता है तो उसे भट्टी में डालते हैं, भट्टी में डालने से खाद निकल जाती है, प्योर सोना रह जाता है। ऐसे हम भी महसूस करते हैं, जैसे ज्ञान और योग की भट्टी में हम पड़े हैं, पांच विकारों की खाद निकलती जा रही है। ये सब बातें अपने अपने अनुभव की है, अपने आगे तो सब कुछ स्पष्ट है कि हमको क्या बनना है। पांच विकारों की अंश भी न रहे, असल में तो हमारे प्योर संस्कार, ये तो माया के संस्कार है। भल खेल ऐसा बना हुआ है जो आधा कल्प हमारे में ईश्वर के प्योर संस्कार रहते हैं और आधा कल्प माया के विकारी संस्कार रहते हैं। ये मायावी संस्कार और ईश्वरीय संस्कार भरने का टाइम कौन सा है? कब भरते हैं? जरूरी ये संगम युगी है, जब ईश्वर की मत पर चलते हैं, ब्रह्मा के मुख की वाणी पर चलते हैं, तो हमारे अंदर दैवी संस्कार भरते हैं जन्म जन्मांतर के लिए। और जब आसुरी मत पर चलते हैं तो आसुरी संस्कार रावण के भरते हैं। बल खेल ऐसा बना हुआ है जो आधा कल्प हमारे में ईश्वर के प्योर संस्कार रहते और आधा कल्प माया के विकारी संस्कार रहते। तो चढ़ती कला और उतरती कला दोनों के संस्कार भरने का समय अभी चल रहा है, चाहे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चले और चाहे मनुष्यों की भ्रष्ट मत पर अथवा मन मत पर चले, अपने हाथ में है। इसलिए कहते हैं मुट्ठी में है तकदीर हमारी, लेकिन अब तो यह जान चुके हैं कि हमको प्योर बनना है जिससे सर्वदा सुख शांति मिलेगी। अब इसके लिए भी अनेक युक्तियां मिल रही है। इस अलौकिक सर्विस में तत्पर ही रहेंगे उतना उतना पुरुषार्थ भी तीव्र होगा। क्या तरीका बताया पुरुषार्थ तीव्र करने का? आत्मा तीव्र गति से पुरुषार्थ करे, इसके लिए क्या तरीका बताया? जितना जितना हम ईश्वरीय सेवा में तत्पर्य रहेंगे उतना उतना हमारी आत्मा में पुरुषार्थ का संस्कार तीव्र होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्योंकि बाप सर्व से उन बच्चों को याद करते हैं। जब बाप ही सर्व से उन बच्चों को खुद याद करेगा तो बच्चों की बुद्धि दूसरी जगह खिसके जा सकती है। दुनिया बाप को याद करती है, गॉड फादर को याद करती है, और बाप अपने बच्चों को इस समय याद करते हैं, तो ज्यादा पावर किसको मिलेगी? जो ईश्वरीय सेवा में लगे रहने वाले बच्चे हैं उनको ही तो जास्ती पावर मिलेगी, क्योंकि दोनों तरफ से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। सिर्फ मनसा का नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो ये भी युक्ति है पुरुषार्थ को तीव्र करने की। क्या क्या तीव्र करने की युक्ति बताई? सर्विस में लगे रहें, याद और सेवा, ये डबल लाख लगाए रहे, और उनको समझाएंगे तो अपने को भी देखेंगे कि मेरे में कोई कमी तो नहीं है। जैसे कोई औरों को कहेंगे बीड़ी मत पियो, और खुद पीते होंगे, पकड़े जाएंगे, तो उनको कौन बैठ पढ़ाने लगेंगे? जो पढ़ने वाले हैं वही उनको पकड़ेंगे, मुस्कराएंगे, तो उनको खींच जाएगी, आखिरी छोड़ ही देंगे। तो ये युक्ति है औरों को समझाना। जैसे कोई औरों को कहते हैं, बाबा भी फरमान करते हैं, जो सुनते हो वो औरों को सुनाओ तो तुम्हारी अवस्था भी अच्छी होगी। परिपूर्ण तो यहाँ ही बनना है, कोई और जन्म नहीं आएगा परिपूर्ण बनने का, और बनना भी अभी ही है। अभी संगम युग में ही हर आत्मा परिपूर्ण बनती है, ऐसे नहीं दूसरे जन्म में बनाएंगे, वहां तो पुरुषार्थ होता ही नहीं। वहां सत्युग त्रेता में तो प्रारब्ध भोगेंगे, इसलिए कभी कभी ऐसा भी क्लास होना चाहिए जो सभी को मुरली चलाने का चांस मिले, बोलने का चांस मिले। झाड़ पर भी समझाना है तो दूसरों को समझाने से अपनी धारणा भी अच्छी होगी। अभी बाप पढ़ाने के लिए सामने है तो क्यों नहीं संपूर्ण बने? सर्वशक्तिमान सामने है तो क्या परिवर्तन नहीं करा सकता? जब वो बाप टीचर गुरु बने हैं तो फिर सजाएं खाने के लिए उनके पास क्यों जाए? वो बाप खुद ही बाप है, टीचर है, सदगुरु है, इसलिए कहते हैं अपने विकर्म मेरे सामने रखेंगे तो आधी सजा तो क्षमा कर दूंगा। वो भी अभी की बात है, अभी माना कब? अभी संगम युग में मैं साकार में आया हुआ हूँ तो मेरे सामने रखेंगे तो आज ही सजा माफ कर दूंगा। कोई कोई कहते हैं कि हमने सब समझ लिया है, ये ड्रामा है, ऐसे ऐसे फिरता है, ऐसे परमात्मा तीन रूप रचते हैं, सब समझ लिया है। लेकिन नहीं, क्या कहा? बहुत से बेसिक नॉलेज वाले ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, ये हमने समझ लिया। लेकिन उन बातों की भी घड़ी घड़ी स्मृति चाहिए, मंथन चाहिए। जितना बुद्धि इसमें रमण करती रहेगी उतना सदैव खुशी की अवस्था रहेगी, अपनी घोट तो नशा चढ़े। मार्ग भी बुद्धियों का है, यहाँ हाथ पाँव की लड़ाई नहीं है। हाथ पाँव की लड़ाई से कोई बाहुबल की राजाई यहाँ नहीं स्थापन हो रही है। यहाँ तो कौन सी राजाई स्थापन हो रही है 21 जन्मों के लिए? योग बल का राज्य स्थापन हो रहा है। तो सब यहाँ अंदर की बात है, अंदर से शुद्ध संस्कार धारण करने, कुमारियों को भी सिखाना है। कई कहती हैं बंधन से छुड़ाओ, लेकिन सर्विस भी, सर्विसेबल भी तो हो ना। सर्विस करने की तांत लगी हुई होगी तो बंधन भी छूट जाएगा। इसलिए बताया कि मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। नहीं तो वहां से भी छोड़े और सर्विसेबल भी ना बने तो फिर क्या करेंगे? फिर माया उनकी बुद्धि को भटकाती रहेगी। इस सर्विस के लायक होंगे तो वह सर्विस आप ही छूट जाएगी। जैसे कानपुर की यह गोप है, ब्रेक्ट लिख दिया गुप्ता जी, संतराम जी अपने को युक्ति से बंधन मुक्त बनाने का पुरुषार्थ करते रहते। ऐसे होते होते आखिर निर्बंधन हो ही जाएंगे। जितना सर्विस में तत्परी होते जाएंगे तो कर्मबंधन का खेल खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा ने स्थापना विनाश का जो ये खेल रचा है वो भी खत्म हो जाएगा। माला भी पूरी हो जाएगी, फिर सब वापस चले जाएंगे। चलना तो है ना, यहाँ बैठ थोड़े जाना है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए जो खुद पकड़ कर बैठे और कहता रहे बंधन से छुड़ाओ। ये तो बुद्धियों की बात है, बुद्धि को कर्मातीत बनाना है, बाकी प्रवृत्ति को भी सिद्ध करना है। इम्प्योर कर्म बंधन को हम छोड़ते जाते हैं और प्योर संबंध हम लेते जाते हैं। कर्म सन्यासी से नहीं बनना है, ये सब बुद्धि की सफाई है। इसके लिए भी युक्तियां हैं, ये तो गारंटी है कि विजय हमारी अवश्य होनी है। ये बीच में विघ्न पड़ते हैं, ये संबंधियों के बंधन भी ना पड़े तो फिर बंधन टूटे कैसे? अपना तो इसमें फायदा ही है, बंधन पड़ने में क्या फायदा है? जितना विघ्न पड़ेंगे उतना लगन बढ़ेगी, तो विघ्न बढ़ने के साथ साथ हमारी लगन की अग्नि भी तीव्र होती जाती है। ये विघ्न हमारी लगन को, लगन की अग्नि को तीव्र करने का साधन है। तो अपना तो सब बातों में फायदा है, सच्चे पाप बादशाह से अगर सच्चा प्यार है तो जो सच्चे बच्चे हैं उनको परवाह नहीं रहती विघ्नों की। ये कोई मानवीय प्यार नहीं है, डायरेक्ट सर्वसमर्थ बाप से योग लगाते हैं, वही बाप विनाश का कार्य कर रहे हैं, स्थापना का कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। इस बात को सिद्ध होने में अभी देरी नहीं लगेगी, प्रैक्टिकल दृश्य से सिद्ध कराई देंगे कि कैसे ब्रह्मा द्वारा माताओं द्वारा स्वर्ग का गेट खोलते हैं और कैसे शंकर जैसे गोप के द्वारा और गोपों के द्वारा इस सृष्टि का विनाश होता है। प्रैक्टिकल दृश्य से सिद्ध होगा तो सब मानेंगे, तब तक अपने निश्चय और हिम्मत से काम लेना है। अच्छा, सभी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, ओम शांति। और क्या वहां से भेज जाते हैं, वहां तो संकल्प ही नहीं होता है, यहाँ आत्मा में संस्कार भर जाते हैं। बस है जी, ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर वापस न जाएं? रोक दिया ना? अरे यही तो बात है कि दुनिया का हर अणु जहाँ से उठता है और वहीं साइकिल पूरा करके जाता है। हर आत्मा कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो बाप बताते हैं कि तुमको जो नहीं मालूम है उसके लिए पुरुषार्थ करो। तुमको तो 5-4 वर्ष के ड्रामा में से बहुत थोड़ा मालूम है, इस जन्म की भी बातें याद नहीं रहती हैं।
इसे ड्रामा चला, एक फिल्म है ये तो, इसे फिल्म की बात है, कैसेट लगाई, कैसेट हूं वो रिपीट हो जाएगी।
उसको तुम्हें मालूम नहीं है ना अभी? तुम्हारी 84 जन्मों की जो कैसेट है तुम्हारी अपनी पर्सनल, वो तुमको पता नहीं है, हमको नहीं पता है, इनको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। जो पता ही नहीं है तुमको तो उसके बारे में तुम हूबहू कहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। खाना खाने के लिए कभी नहीं सोचता कोई कि बाकी में होगा, ड्रामा में होगा तो हम खाना खा लेंगे, फटाफट थाली पर पहुंच जाते हैं, किचन में पहुंच जाएंगे खाना बनाने के लिए। पुरुषार्थ के लिए ये प्रश्न क्यों आता है कि हूबहू ड्रामा बना हुआ है तो हम क्यों पुरुषार्थ करें? इसलिए जो बीत चुका सो ड्रामा। ड्रामा तो जो बीत चुका है वो बहुत अंश मात्र बीत चुका है।
मेरा मतलब, मेरा जो प्रश्न है थोड़ा सा हटकर गया, हल्का हटकर की है कि अगर पिक्चर बनी हुई है उसको कुछ चेंज नहीं होना है, जब कैसे लगाए शुरू हो जाए उसका हर साल आना है, हर
वो तो हो गई शुरू।
लेकिन जब हम चेंज कर रहे हैं उसमें, जब रियर्सल फैक्टर, रियर्सल का मतलब ये होती कोई नई चीज वी आर गेटिंग इन न्यू समथिंग।
वो दुनिया भी ड्रामा थोड़े ही है, ये तो बना बनाया अनादि अविनाशी ड्रामा है।
अनादि अविनाशी ड्रामा
जैसे आत्मा अनादि है, ऐसे आत्मा के अंदर जो संस्कार भरे हुए हैं 5000 वर्ष के, वो भी अनादि है।
मतलब इस ड्रामे में, उस ड्रामे में कितना अंतर है कि इसकी शुरुआत रियर्सल के बाद,
इसकी शुरुआत नहीं होती है, ये अनादि है। अनादि का मतलब जिसकी आदि न हो।
रिहर्सल भी तो अनादि होगी, हर
रिहर्सल के लास्ट में रिहर्सल होगी। रिहर्सल अनादि का मतलब ये नहीं कि रिहर्सल हमेशा होती रहती है।
5000 वर्ष के लिए तो होगी
नहीं, ये सिर्फ इस समय होती है रिहर्सल।
अब ये रिहर्सल का जो एक्चुअल पार्ट है वो 5000 वर्ष चलेगा।
हाँ वो चलेगा,
चलेगा ना। फिर 5000 वर्ष बाद
फिर ऐसे ही रिहर्सल होगी,
यानी इससे पहले 5000 वर्ष ऐसे
ऐसे ही।
रिहर्सल क्यों करते हैं?
आप थोड़े ही क्यों करने वाले हैं? आपसे तो बना बनाया जो संस्कार है वो आपकी आत्मा में ऑलरेडी भरा हुआ है।
तो फिर जो हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? वॉश आउट करने के लिए थोड़ा सा क्या?
आपको कुछ पता ही नहीं है आप किस लिए कर रहे हैं, आपको करना ही है, बने हुए हैं। पुरुषार्थ न करना होगा तो भी करेंगे, कर्म के बगैर इस दुनिया में कोई रह नहीं सकता। ये अणु अणु का कर्म अनुदा हुआ है। क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है? नौकरी क्यों कर रहे हैं? छोड़ दो, जो छोड़ू गा क्या होता है? आपका माइंड तो क्लियर है, खाने पीने के लिए और नौकरी के पेट के धंधे के लिए कभी नहीं सोचेंगे, आत्मा के पुरुषार्थ के लिए सोचेंगे। हम क्यों करें, क्यों चल रहा है ऐसा? ऐसे क्यों?
ऐसा इसलिए
जो आत्मा के लिए, वो शरीर के लिए भी
ऐसा इसलिए सोचते हैं। चलो आत्मा की ऊपर के लिए क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए सोचता है कि जब हर चीज वेल सेटल्ड है ऑलरेडी,
जो वेल सेटल्ड है उसका आपको पता नहीं है इसलिए करना है। जो वेल सेटल्ड है उसमें आपको पता है कि आपका पार्ट क्या है 83 जन्मों में, 83 जन्मों का आपको पता है। जब पता नहीं तो वेल सेटल्ड आप
ऑलरेडी कह दीजिए कि आप आज इस जगह हैं, 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही थे, 5000 वर्ष
बाद बस इतने थोड़े टाइम के लिए ना। वही तो
यदि सिर्फ वर्तमान समय की बात है तो
तुम्हें थोड़े ही समय के ड्यूरेशन का तो पता चला, बाकी तो पता नहीं है ना।
ये तो युग में भी कोई पार्ट होगा या त्रेता में होगा, द्वापर में होगा, कलयुग में होगा,
वो पता नहीं है आपको। जब आपको पता नहीं है तो आप पुरुषार्थ करिए। क्या
हमारा जन्म कलयुग हुआ?
जन्म आपका कर, आत्मा पहला फर्स्ट पार्ट जो है वो पक्का करो। तुम आत्मा हो, तुम्हारा जन्म नहीं होता। आत्मा तो अनादि अविनाशी है, वो कभी जन्म नहीं लेती, वो कभी मरती नहीं। पहला पार्ट आपका पक्का नहीं है इसलिए ये सब बातें पैदा हो रही है। आप तो अजर हमारा अविनाशी आत्मा है। क्या समझ रहे
हैं?
यही तो बात है, आत्मा इसलिए इसलिए तुम एक जन्म के लिए जीने की बात कर रहे हो। यहाँ एक जन्म की बात नहीं है।
मैं सपनों में जी सकता हूँ।
क्यों नहीं?
मेरा जन्म में हो सकता है।
क्यों नहीं हो सकता?
हाँ तो हमने यही कहा कि ड्रामे का रतबा हो सकती है।
नहीं,
जब मैं कलयुग में जन्म
नहीं, जिसका जिसके अंदर ये संस्कार भरा हुआ है, जिसके अंदर देखो अभी वाणी में बताया, कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो ये चाहती हैं इस दुनिया में हम आए ही क्यों, उनके अंदर ये संस्कार पैदा हो रहा है अभी, क्योंकि ज्यादा दुख भोग रही है ना। उनको ये तो ध्यान है नहीं कि हमने ही बुरे कर्म किए हैं इसलिए हम इतने दुखी हो रहे हैं, भल परमात्मा आया हुआ है। तो अपनी तरफ बुद्धि न जाने का कारण यही है कि आत्मा अभिमानी अंतर्मुखी नहीं हुए। अगर अंतर्मुखी है तो ये सारा प्रश्न समाधान हो जाते हैं स्वतः ही।
निकलता है कि यदि हम ट्रेनिंग जो हो रही है इससे हमारा जन्म चेंज हो सकता है,
लेकिन आप उन बातों को मानेंगे तब ना। जो मानते ही नहीं उनका कैसे चेंज हो जाएगा?
नहीं तो अगर मान मैं मान लू की
आप मानेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा।
तो फिर कुछ शब्द को कैसे हटाएंगे हम, जब जाके आप जिस जगह आज है उसी जगह आप पहले 5000 वर्ष पहले?
वो तो होंगे ही, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम का जो आपको पता चल गया है वो निश्चित है, वो वैसा ही होगा। इस एक जन्म के थोड़े से समय के लिए जो बीत चुका है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको यहां ऐसे ही पहुंचना चाहिए।
यहां से बात आउट कर दीजिए बाबा माइंड की, एक जगह कंट्रडिक्शन हो रहा है कि एक तरफ तो यह है शब्द की यदि हम इस ट्रेनिंग को ठीक से कर लें
आप तो पूरा हाउ हप करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि हम आखिरी जन्म में भी बिल्कुल दुखी न हो लेकिन आखिरी जन्म में जो दुखी नहीं होगा वो पहले जन्म में सर्व सुखी कैसे हो सकता है। संपूर्ण प्राप्ति के लिए संपूर्ण दुख में भी पहुंचना पड़े, एकदम उत्थान के लिए एकदम पतन में भी पहुंचना पड़े, एकदम सतयुग रूपी सवेरा लाने के लिए एकदम अंधेरे में भी पहुंचना पड़े। अगर अंधेरा नहीं आएगा तो सवेरा नहीं आएगा।
तो बात मानते बाबा तो ये कि जैसे कोई भी किसी भी चीज उत्पत्ति है उसके चार चरणों में गुजरेगी, उत्पत्ति है फिर उन्नति है फिर अवनति है, उसका एंड है
तो हो गया ना।
हाँ, निश्चित है
तो हो गया ना।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या क्यारी सिर्फ क्यारी बना रहे हैं कि बीच ठीक ठाक जमे इसमें ये
आप कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे बाबा चलाता है वैसे चलना है सिर्फ।
मैं बाबा से तो पूछ रहा हूँ, बाबा
वही कह रहे वही बता रहे हैं बाबा कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे बाबा चलाए वैसे चलना है। चलेंगे चलेंगे तो आपका सब कुछ अच्छा चेंज हो जाएगा।
ये प्रश्न क्यों आते हैं हमारे माइंड
में, ये प्रश्न इसलिए आते हैं कि आपका पहला कोर्स पक्का नहीं हुआ है।
कोर्स के आधार पे तो बता रहा हूँ, एक प्रश्न तो ये कि आप जिस जगह हैं ऐसे ही 5000 वर्ष पहले थे ऐसे ही
दुनिया। हाँ, ये तो आत्मा की बात आप कर रहे हैं। दुनिया का एक एक अणु उसका भी नियम यही है, हर एक अणु का साइकिल जुदा हुआ है। जिस अणु वो अणु जहाँ से चला है वो घूम घाम करके चारों तरफ चक्कर लगा करके और जब वो टाइम की सुई वहां पहुंचेगी तो वहीं पहुंच जाएगा। ये सुतली पड़ी हुई है, ये सुतली जिन जिन तत्वों से बनी है इसी टाइम पर 5000 वर्ष के बाद वही अणु मिलकर के यहाँ पर सुतली ग्रुप में आ जाएगा, बिल्कुल सुतली ग्रुप में ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे। ऐसे भी थी, ऐसे ही थी, ये मक्खी उड़ती हुई जा रही है, ये 5000 वर्ष के बाद यू बहू यही तोड़ती हुई खड़ी हो जाएगी। फिर
बनी बनाई है।
हाँ जी,
अगर इसको चेंज न करें तो सिर्फ ऐसे
आप चेंज करने वाले हैं ही नहीं, आप चेंज कर इसको इसको आप चेंज करने वाली, ये समष्टि की बात हो रही है, ये व्यक्तिगत बात नहीं हो रही है। ये बात जो आप बोल रहे हैं वो समष्टि के कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं। तो समष्टि में आपका कोई हक नहीं है, वो उसका हक है और वो बता रहा है कि सब कुछ अनादि है, वो खुद ही सस्ती पर आने के लिए बंधा हुआ है। मुझे आना पड़ता है, मुझे बंदरों के बीच में आना पड़ता है, बंदरों को देखना पड़ता है, उसके लिए भी कंपल्सन है कहीं के भी, तो वो भी अपने को कंपल्सन में महसूस करते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। तो जो ईश्वर कुछ नहीं कर सकता तो आत्मा क्या कर सकती है।
तो ये इसी में
एक होता है,
ईश्वर कुछ नहीं कर सकता, आत्मा कुछ नहीं कर सकती, तो ईश्वर जो कुछ कर रहा है ये किस लिए कर रहा है।
नहीं, ईश्वर कुछ कर सकता है,
चेंज कर दे ड्रामा,
ईश्वर भी कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता 5000 वर्ष के ड्रामा में, वो भी बांधा हुआ है हर 5000 वर्ष के बाद इस सृष्टि पर आने के लिए बांधा हुआ है।
मूल बात ये होगी कि मनुष्य के अंदर जो कुछ तरह से बुराई आ जाती है मनुष्य आत्मा में, उस तरह से वो किसी तरह से हो चुका है,
वो रास्ता आकर के सिर्फ बता देता है बस, और कोई दूसरा तरीका नहीं। बाकी ये कहना कि ऐसा रिपीटेशन ही क्यों होता है, ये तो प्रश्न ही गलत है। अनादि अविनाशी ड्रामा है वो तो अनादि अविनाशी यूं ही चलेगा। आप समष्टि की बात छोड़ दीजिए, आप अपनी बात करिए ना, अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं है सारी दुनिया को, या आप बात कर रहे हैं ये तो कोई बात ही नहीं हुई। पहले अपने को तो कंट्रोल में लाइए। फिर
लेकिन उसमें एक चीज जरूर आती है कि क्योंकि हमने सबसे पहले प्राणी जो है मनुष्यों के द्वारा इस विश्व का रचना होती है, सब तभी कहलाता जब मनुष्य आपका हो तो सरकार कहलाएगा, अन्यथा इस सरकार की बात होता है मुश्किल हो
जाती। क्या प्राणियों की रचना होती है
मनुष्य आत्मा अगर न हो संसार में तो मनुष्य संसार की बात न करता होती है।
कुत्ते बिल्ली की आत्मा ना हो तो भी नहीं चलेगा,
संसार की बात नहीं होती मेरी दृष्टि।
अरे कुत्ते बिल्ले भी ना हो तो भी नहीं, एक अणु अणु की अगर सेटिंग नहीं होगी तो भी नहीं होगा। हर एक चीज जरूरी है।
अंग मानते हुए मैंने पूछ लिया, क्या ऐसा संभव है कि ये ड्रामा कुछ ऐसा हो जाए कि ये स्थिति ना आए हमारे सामने जो आज है?
ये जो गुजर चुका है और जो जैसा हो चुका है, जितना भी आपकी स्मृति में है, ऐसे तो जो इस जिंदगी में बहुत सी बातें भूल जाती हैं, याद नहीं रहती, लेकिन जो भी आपकी स्मृति में है वो तो निश्चित है कि वो होना ही होना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। और ये लाजमी है कि ऐसा ही होना कल्याणकारी था, इसमें आपको प्रश्न करने की भी दरकार नहीं। जब आप समझ जाएंगे कि ये क्यों कल्याणकारी था, तब आपका ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। अभी अंदर से कोई दुख है कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये प्रश्न पैदा हो रहा है, वो दुख का निवारण हो जाएगा, बात समझ में आ जाएगी कि ये जो ऐसा ड्रामा बना है, ये लूला लंगड़ा हो गया, ये अंधा हो गया, ये बहरा हो गया, ये काना हो गया, ये पागल हो गया, क्यों हो गया?
इतने की भी नहीं है, क्योंकि नेचर का एक नियम है कि कोई चीज जब अपने एंड के लिए जाती है तो चार चरणों में गुजरती है, उसमें दूसरी जरूरी आती है लास्ट,
तो यही तो हुबहू रिपीटेशन हुआ।
तो
चार अवस्थाओं में से गुजरना यही तो हुबहू रिपीटेशन है।
परमात्मा का आना और परमात्मा का ज्ञान देना, परमात्मा का कुछ वॉश आउट करना, मैं ऐसे ही सोच रहा कि परमात्मा कुछ चेंज चाहता है, तो चेंज की यही स्थिति ना लगी।
वो चेंज चाहता नहीं है, वो तो सिर्फ एक परिवर्तन की बात बताता है, आकर के इस तरह परिवर्तन हो जाता है ऑटोमेटिक। अब अपने लिए जो जितना सुख का भंडारा भरना चाहे वो भरे, कोई कहे कि हमारा तो सुख का दुख का भंडारा पहले से ही निश्चित है, हमें नहीं भरने की दरकार।
नहीं, ये नहीं गलत, ये नहीं मैं सिर्फ तो इतना कहना चाह रहा था इसमें कि यदि हम पुरुषार्थ करके कुछ अच्छा करके, या परमात्मा के निर्देश पर चल के, जैसे परमात्मा का साक्षात्कार में आए हुए और हम आज मैं ईमान के चल रहा हूँ, मैं परमात्मा को मिलने आ रहा हूँ, तो अगर ऐसा है तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि
अगर ऐसा है
तो मेरा स्पष्ट बात है कि मैं अगर परमात्मा के सामने बोल रहा हूँ तो मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा, और ये यही जानना चाहता हूँ कि परमात्मा कुछ ऐसा कर सकता है कि जिसकी ये दुर्दशा ना हो।
अरे दुर्दशा नहीं होगी तो अच्छी दशा कैसे होगी?
तो फिर ये तो नेचुरल है, ये तो नेचर का इंफॉर्मेशन है, सर्किल है, तो हमें ये परमात्मा क्या
जो जीते परमात्मा क्या, वो तो सिर्फ रास्ता बताने आया है, बस उसका पार्ट ही है रास्ता बताने का।
इसका बात पर ये हुआ कि मनुष्य सिर्फ इतना भी भूल गया है कि कोई किसी चीज की उत्पत्ति और एंड तक जो है चार चरण,
बिल्कुल भूल गया, बिल्कुल भूल गया।
तब ठीक है, अगर इतनी बात के लिए है